نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورت سواد کا آغاز کریں گے. براہ راست آیتوں پہ جانے سے پہلے سورت کا خلاصہ اور اس کے بعد پھر ہم آج کے سبق کا خلاصہ دیکھیں گے. سورت سواد قرآن پاک کی ان تین سورتوں میں سے ہے, یعنی جس کا آغاز صرف ایک حروف مقطع سے ہوتا ہے. دو سورتیں اور کون سی ہیں؟ سورت قاف اور نون. ٹھیک ہے. سورت سواد کا تعلق مکی سورتوں کے جس گروپ سے ہے, اس میں شامل تمام سورتوں کا مرکزی مضمون توحید ہے. سورت قاف ان دو گروپس کی ابتدائی سورت ہے, جس میں شامل سورتوں کا مرکزی مضمون آخرت اور انذار آخرت ہے. جبکہ سورت نون, جس کو سورت قلم بھی کہتے ہیں, بالکل ابتدائی دور کی سورت ہے. سورت سواد کا اگر ہم زمانہ نزول دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ میں اعلانیہ دعوت کا آغاز کیا تو قریش کے سرداروں میں کھلبلی مچ گئی. حق آتے ہی جو معاشرے پہ اثرات ہوتے ہیں وہ دکھنے لگے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سورت کا جو زمانہ نزول نبوت کا چوتھا سال ہے, یعنی جس وقت ابھی وہ ظلم و ستم تو شروع نہیں ہوئے کہ جو بعد میں تھے, لیکن بہرحال ہوا. بعض کہتے ہیں یہ حضرت عمر کے ایمان لانے کے بعد کا واقعہ ہے, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ہجرت حبشہ کے بعد ایمان لائے تھے. لیکن اس صورت میں ایک واقعہ ہے, بالکل شروع میں ہی آ جائے گا. اس کو بھی بعض لوگ اس صورت کی شان نزول بتاتے ہیں, جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ ابو طالب کی بیماری کے آخری زمانے میں پیش آیا, اور اگر وہ مانی جائے تو پھر اس صورت کا زمانہ نزول نبوت کا دسواں یا گیارہواں سال ہے. کچھ بھی ہو, لیکن یاد رکھیے کہ یہاں وہ حق اور باطل کی بات ہو چکی ہے. وہ واقعہ چونکہ ابتدائی آیتوں میں ہی آ رہا ہے تو میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں, کیونکہ بعض نے اس کو اس سورت کا شان نزول بھی بتایا. امام احمد, نسائی, ترمزی اور ابن جریر, ابن ابی شیبہ, ابن ابی خاتم اور محمد بن اسحاق, یہ روایات ہیں, یہ سب کہتے ہیں کہ جب ابو طالب بیمار ہوئے اور قریش کے سرداروں نے محسوس کیا کہ اب یہ ان کا آخری وقت ہے, تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ چل کر شیخ سے بات کرنی چاہیے, وہ ہمارا اور اپنے بھتیجے کا جھگڑا چکا جائیں تو اچھا ہے. ذرا نوٹ کیجئے گا اگلے جملوں کو, کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا انتقال ہو جائے اور اس کے بعد ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی سخت معاملہ کریں اور عرب کے لوگ ہمیں تانا دیں کہ جب تک شیخ زندہ تھا یہ لوگ اس کا لحاظ کرتے رہے, اور اب اس کے مرنے کے بعد ان لوگوں نے اس کے بھتیجے پر ہاتھ ڈالا. یہ جملہ میں نے کیوں آپ سے کہا, غور کریں, اتنی مروت اس دور میں بھی تھی کہ لوگ کسی پر دین کے نام پر بھی ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈرتے تھے. آج تو وہ مروت بھی ختم ہو گئی, وہ تو غیر مسلم اور مسلم تھے. آج تو مسلم دوسرے مسلم گروہ کے بارے میں کوئی بات کہتے ہوئے بھی بعض دفعہ نہیں چونکتا. تو ان کو شرم یہ آئی کہ اگر ابو طالب کے بعد ہم نے کچھ بات کی, اور یہاں آپ سب وہ بات دہرا لیجئے کہ ابو طالب کے ایمان نہ لانے کے پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو بہت بڑی حکمت ملتی ہے وہ یہی ہے کہ اگر ابو طالب مسلمان ہو جاتے تو قریش ان کے بھی دشمن ہو جاتے, تو پھر اللہ کے نبی پر ہاتھ ڈالنا آسان ہو جاتا. ابو طالب ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ڈھال بنے رہے, یعنی آپ کہے کہ ادھر کفر ہے, ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, بیچ میں ابو طالب ہے جو محمد کو جان سے پیارا رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور دوسری طرف وہ سردار بھی ہیں اور ان کے ان سے مراسم بھی ہے. تو مروت بہرحال ایسی موجود تھی کہ لوگوں نے ان کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تکلیفیں مکہ میں نہیں دیں جو کہ دے سکتے تھے. تو خیر, اپنی عزت بچانے کے لیے انہوں نے اتفاق کیا. اس رائے پر سب کا اتفاق ہو گیا. تقریباً 25 سردار آنے قریش, جن میں اب نوٹ کیجئے کہ بڑے بڑے نام ہیں, اور بالکل اب ابو طالب کے دنیا سے جانے کے وقت قریب ہیں, تب تک بھی یہ دیکھے اللہ کے نبی کی دشمنی سے باز نہیں آ رہے. مثلاً ابو جہل, ابو سفیان, امیہ بن خلف, عاص بن وائل, اسود بن مطلب, عقبہ بن ابی معیط, عتبہ اور شیبہ, جو نام لکھ سکے لکھ لے, نہیں لکھیں تو نو پرابلم. یہ سب ابو طالب کے پاس پہنچے. ان لوگوں نے پہلے تو حسب معمول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی شکایات بیان کی, پھر کہا ہم آپ کے سامنے ایک انصاف کی بات کرنے آئے ہیں. دیکھیے, حق کے خلاف کھڑا شخص بھی خود کو منصف کہتا ہے, یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے کہ بڑی سے بڑی برائی کرنے والے کو بھی یہ یقین دلا دیتا ہے کہ تم بالکل ٹھیک کام کر رہے ہو۔ تو کہنے لگا کہ ہمیں سیدھی سیدھی بات بتا دے، آپ کا بھتیجہ ہمیں ہمارے دین پر چھوڑ دے اور ہم اس کو اس کے دین پر چھوڑ دیتے ہیں، وہ جس معبود کی عبادت کرنا چاہے، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں، مگر وہ ہمارے معبودوں کی مذمت نہ کرے اور یہ کوشش نہ کرتا پھرے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دے، اس شرط پر آپ ہم سے اس کی صلح کرا دیں۔ ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور آپ سے کہا کہ بھتیجے، یہ تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے ہیں، ان کی خواہش ہے کہ تم ایک منصفانہ بات پر ان سے اتفاق کر لو تاکہ تمہارا اور ان کا جھگڑا ختم ہو جائے۔ پھر انہوں نے وہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی جو سرداران قریش نے ان سے کہی تھی۔ آپ نے جواب میں فرمایا، چچا جان، میں تو ان کے سامنے ایک ایسا کلمہ پیش کرتا ہوں جسے اگر یہ مان لیں تو عرب ان کا تابع فرمان اور عجم ان کا باج گزار ہو جائے۔ یعنی سارے عرب کے بھی یہ بادشاہ اور عجمی جو ہیں وہ تو آف کورس وہ تو سب ان کو اپنی زمینوں میں سے بھی حصے دینے کو تیار ہو جائیں۔ یہ سن کر پہلے تو وہ لوگ سٹ پٹا گئے، ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا آخر کیا کہہ کر ایسے مفید کلمے کو رد کر دیں۔ ابھی انشاءاللہ سورت شروع کریں گے تو آپ کو ان کے ایکشنز اور ان کے اٹھ کے چل کے جانے کے سٹائل تک قرآن میں بتائیں کہ کس طرح حق کی چوٹ جب کسی کی انا پہ پڑتی ہے تو اس وقت انسان کا رسپانس ہوتا ہے۔ پھر کچھ سنبھل کر بولے، تم ایک کلمہ کہتے ہو، ہم ایسے 10 کلمے کہنے کو تیار ہیں۔ کیونکہ آپ کو پتا کہ عربوں کے مزاج میں لیڈرشپ ہے، ان کو کوئی یہ کہہ دے نا کہ ہم تمہیں بادشاہ بنا دیں گے، سردار بنا دیں گے، تو چاہے کسی کی ماں کا بھی قتل کروا دیں، اتنا ان کو شوق ہے بڑا بننے کا۔ یہی چیز انہوں نے کہا کہ ہم 10 کلمے کہنے کو تیار ہیں، مگر یہ تو بتاؤ کہ وہ کلمہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ۔ اس پر وہ سب یک بارگی اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ باتیں کہتے ہوئے نکل گئے جو اس سورت کے ابتدائی حصے میں اللہ تعالیٰ نے نقل کی ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ بات بہت ہی زیادہ قابل غور ہے۔ اللہ کے نبی اگر اس وقت اس دعوت کو قبول کر لیتے تو وہ رسپانس نہ دیکھنا پڑتا جو دیکھا، بلکہ رسپانس سے بڑھ کر ریئیکشن ہو گیا تھا۔ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سب کو خوش رکھو، یعنی آپ کو اس صورت میں جواب ملے گا کہ کیا سارے دینوں کو ملا کر ایک دین بنانے سے سکون اور خوشی اور دنیا میں پیس آ جائے گا؟ کسی کو کچھ نہ کہو، ریلیجن از یور پرسنل میٹر، کیا یہ جملے ٹھیک ہے؟ مائنڈ یور بزنس اور مائنڈ یور ریلیجن، ڈونٹ ٹاک اباؤٹ ریلیجن، اسلام اس کو نہیں مانتا۔ اگر اللہ کے نبی نے یہ آپشن قبول کی ہوتی تو آج میں کہتی ہوں ویسٹ میں رہنے والوں کی جان پہ احسان کر دیا ہوتا۔ آج ویسٹ کی کیا خواہش ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ یہ جملے ذرا آپ نوٹ کریں تو یہ وہاں نہیں تھے، یہ یہاں بھی ہیں کہ دیکھو تم اپنے دین پہ خوش، ہم اپنے دین پہ خوش۔ مان لیا، اب ہوتا کیا؟ آپ ذرا امیجن کیجئے، لے آئیے اپنے آپ کو 2015 میں، پچھلے 10 سال کے ہونے والے یونیورسل انسیڈنسز کو سامنے رکھ لیجئے۔ کوشچن جو کروں گی غور سے اس کو سن کے اپنے آپ سے جواب پوچھیں۔ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم کفر کو نہیں چھیڑتے، وہ جو کر رہا ہے کرنے دیں، مان لیا ہماری بلا سے، ہم نہیں تو رات پہ تنقید کرتے، ہم نہیں انجیل پہ بات کرتے، ہم نہیں بائبل پہ بات کرتے، ہم جیزس پہ، موسیٰ پہ اور ان کے مذہب پہ بات نہیں کرتے۔ لیکن میرا کوسچن یہ ہے کہ کیا جب ہم کفر کو اس کے حال پہ چھوڑتے ہیں تو انہوں نے اسلام کو اس کے حال پہ چھوڑا ہوا ہے؟ ان کو تو ایک گز کا ٹکڑا نہیں برداشت ہو رہا، ان کو تو آپ کا نقاب اچھا نہیں لگتا، ان کو آپ کی داڑھی اچھی نہیں لگتی، ان کو انٹرسٹ فری میٹرز اچھے نہیں لگتے، ان کو آپ کے نبی کی شادیوں پہ ابھی تک اتنا اعتراض ہے جو لڑکیوں کے باپوں کو نہیں ہوتا، وہ ان بیچاروں کو بنا ہوا ہے۔ تو یاد رکھیے، اگر ہم کفر کو اس کے حال پہ چھوڑ بھی دیں گے نا، وہ اسلام کو اسلام کے حال پہ نہیں چھوڑے گا۔ اللہ نے قرآن میں یہ کہہ دیا، لن تردان کل یہود ولن نصارا حتی تتبیع ملتہم، ایک صرف ان کی خواہش ہے خوش ہونے کی، حتی تتبیع ملتہم۔ حتی تتبیع کب ہوگا؟ کہ جب تم ان کے مذہب پہ چلو، تم ان کے نقش قدم پہ چلو۔ اور وہ کب ہوگا؟ جب تم اسلام چھوڑ کر ان کے طریقے بناؤ، تم ان کی ویلنٹائن بناؤ، تم ان کی بسنت بناؤ، تم ان کا کرسمس کا کیک کاٹو، تم ان کو ہیپی کرسمس کو، پھر کوئی کہہ دے کہ یہ اچھا نہیں تو کرے، کتنے ریجٹ لوگ ہیں دیکھو۔ اچھا آج تک دیکھیے، مزے کی بات ہے، ان میں سے کوئی ہمارے ساتھ عید کی نماز پڑھنے نہیں گیا، ان میں سے کسی نے آج تک ہمارے طریقوں پہ اپنی شادیوں پہ کے بعد ولیمے نہیں کیے، اپنے بچوں کے عقیقے نہیں کیے، हम उनके कहने पे हर काम करने को तैयार हैं। हमने हैप्पी बर्थडे का केक भी काटा, हमने बेबी शावर भी मनाए, और हम सब कुछ करके हमने यहाँ की शादियों की तरह फूल भी पकड़ा दिए, केक भी कर लिए, फ्लावर गर्ल्स भी बना ली, लेकिन क्या वो आपसे मुझसे खुश होंगे? नेवर, नहीं होंगे। तो याद रखिए, लकुम दीन नकुम वलियत दीन, ना छेड़ो ना छोड़ो, ये है इस्लाम की पॉलिसी। जब हम छेड़ते नहीं और वो हमें छेड़े तो फिर छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि मुसलमान बेवकूफ़ और ना समझ तो नहीं होता। तो बहरहाल आप यहाँ आप देख सकते हैं कि किन हालात की ये सूरत है। टसल इतनी बड़ी हुई है कि अपने सच्चे दीन पर कायम रहना मुश्किल है, और गैरों के रंग में से अपने आप को और अपनी नस्लों को बचाना मुश्किल है। ऐसे हालात में मुसलमान क्या करें, यह है इस सूरत का थीम। अल्लाह सुब्हानहु तआला ने इसमें हमें दो आदिल बादशाहों की कहानियाँ सुनाई हैं। एक का नाम दाऊद अलैहिस्सलाम है और दूसरे का नाम सुलेमान अलैहिस्सलाम है। दोनों बाप बेटा भी थे। और यहाँ हम देखेंगे इस सूरत के बुनियाद में कि जब सच्चा दीन पास होता है तो फिर उस वक्त क्या होगा। अच्छा, अब ये वाक्य जो हमने पढ़ा है ना, बास लोग कहते हैं कि ये वाक्य बिल्कुल ऐसा ही है जैसे है, लेकिन ये वक्त अबू तालिब की मौत के वक्त का नहीं है। ये जो इश्काल पैदा हो रहा है ना कि क्या ये सन 4 तब्बी में हुई या 9-10 में, तो बास कहते हैं कि ये अबू तालिब की मौत का वक्त नहीं है, बल्कि ये उस वक्त का वाक्य है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत आम की इब्तदा की थी और मक्का में पै दर पर ये खबरें फैलनी शुरू हो गई थी कि आज फला आदमी मुसलमान हुआ और कल फला हो गया। इस वक्त सरदारान कुरैश यके बदीगरे कई दफ़ा वफद बनाकर अबू तालिब के पास पहुंचते रहे ताकि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तबलीग से रोक दें, और इन्हीं वफूद में से एक वफद के साथ हुआ। और मेरा अपना दिल इसी पे मुतमईन है कि ये बात इसी वक्त की है। एक और वाक्य सुनिए और इससे आपको और ज़्यादा अच्छा समझ आएगा कि ऐसे हालात में फिर करना क्या होता है। रिवायत में थे जमख्शरी और दूसरे मुफसरीन कहते हैं कि ये वफद अबू तालिब के पास उस वक्त गया था जब हज़रत उमर के ईमान लाने पर सरदारान कुरैश बौखला गए थे। याद रखिए, इस्लाम की कामयाबियां कुफर को अच्छी नहीं लगती। आज भी दुनिया में कुफर की यही स्ट्रेटेजी है, जहां इस्लाम को कोई खैर मिलती है, मुसलमानों को कोई तरक्की मिलती है, आप राइट अवे उसके 1-2 महीने के बाद देखेंगे कोई यूनिवर्सल प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, कोई ना कोई ऐसा यानी फितना खड़ा हो जाता है जिसके अंदर भी कई मुसलमानों को मार दिया जाता है। तो ये बौखलाहट थी उनकी। और कुछ कहते हैं कि इस तरह के हालात में फिर जो ये सारे बातें हुई तो उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बात लगाई। कुफारे कुरैश पहले ही ये देखकर घबराए हुए थे कि इस्लाम की दावत लेकर उनके दरमियान से एक ऐसा शख्स उठा है जो अपनी शराफत, बेदाग सीरत और दानाई और संजीदगी के एतबार से सारी कौम में अपना जवाब नहीं रखता। नोट कीजिए, काफिर जिस चीज़ पे परेशान होता है ना, वो मुसलमान का किरदार है। जब बेदाग किरदार होगा ना मुसलमानों का, तो काफिर परेशान होगा। इस्लाम के पास और मुसलमान के पास सबसे कीमती दौलत और सबसे बड़ा हथियार उसका किरदार है, एथिक्स, अखलाक, कोई उंगली डाल ही ना सके, नो क्वेश्चन एट ऑल। कोई आपके ऊपर तनकीद करे तो किस बात पे करे, ना आप झूठ बोलते हैं, ना आप धोखा देते हैं, ना आप वक्त ज़ाया करते हैं, ना आप चीटर हैं, ना आप किसी के बारे में गलत जुमले बोलते हैं, कोई क्या बोले। देखिए, जो लड़ता नहीं है ना उसके साथ लड़ना बड़ा मुश्किल है। मैंने देखा जो लड़ता नहीं है ना, लोग उसके साथ इस बात पर गुस्सा खाते हैं कि जवाब क्यों नहीं देते, बोलते क्यों नहीं हो, किल विद काइंडनेस, ये क्या बात है, हर बात में स्माइल, हर बात में इग्नोर, कुछ बोलो, अब बोलती क्यों नहीं, जवाब दो। तो ये किरदार जो है ना बड़ा खूबसूरत होता है कि मुखालिफ सटपट आ जाए, और फिर उस पर सोने पे सुहागा क्या हुआ, सुनिए। फिर इसका दस्ते रास्त अबू बकर जैसा आदमी है जिसे मक्के और इसके इतराफ का बच्चा बच्चा एक नहायत शरीफ, रास्तबाज और जकी यानी अकलमंद इंसान की हैसियत से जानता है। अब जो उन्होंने देखा होगा कि उमर बिन खत्ताब जैसा जरी और साहिब अजम आदमी भी इन दोनों से जा मिला है, तो यकीनन इन्हें महसूस होगा कि खतरा हद से भदे बर्दाश्त से गुजरता जा रहा है। समझ आइए बात, जिस चीज पे वो परेशान थे वो ये था कि नबी सल्लम का साथ देने वाले कोई नासमझ और बेवकूफ और कमजोर लोग नहीं है, ये उस मुआशरे के पढ़े लिखे साहिब किरदार और जनरस लोग हैं जो उनके अंदर भी बहुत अहमियत रखते हैं। तो ये तो ऐसे ही जैसे आज के दौर में कोई बहुत बड़ा फलाह आमा का काम करने वाला शख्स मुसलमान हो जाए, या कोई किसी बहुत बड़ी चीज़ का नाम लेकर मुसलमान हो। चंद दिन पहले किसी ने एक ईमेल भेजी थी, मैं ऐसी चीज़ों को फॉरवर्ड नहीं करती, मुझे शौक नहीं है इन चीज़ों का, लेकिन उन्होंने बड़ा लिखा तो इसको ज़रूर फॉरवर्ड करें, मीडिया छुपा रहा है लेकिन हमें इसको आम करना है। तो हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी, वो कोई मशहूर शख्स था, किसी जगह कोचिंग कर रहा था वो, और वो मुसलमान हो गए। यानी नाम भी था, अब मुझे ये भी नहीं याद वो कौन है, आपको बताओ तो बता दें। यानी आजकल ही के दिनों में इनकी आर्मी का या नेवी का कोई बहुत बड़ा कमांडर है, वो मुसलमान हो गए, तो लोग ये बात छुपा रहे हैं। तो वो क्यों हुआ, उसके साथ एक मुस्लिम खड़ा, मतलब मुस्लिम की रवैये से या उनकी तबलीग से। तो याद रखिए कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इनको कोई बीट नहीं कर सकता। अगर आप अच्छे बनते जाएंगे, कोई तुमको दूसरी तरफ नहीं डाल देगा। और याद, ये भी बात याद रखिए कि जब ये सारी बातें हुई ना, तो उसके बाद फिर अल्लाह के नबी की डिटर्मिनेशन और फर्मनेस को देकर अबू तालिब ने क्या कहा था कि मेरे बेटे, जो तुम करते हो करते रहो, मैं तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं आने दूंगा और तुम अपना काम करते रहो। तो लिहाजा इस चपकलश को हम इस सूरत में देखेंगे, और फिर इसमें हम देखेंगे कि मकसद हयात क्या है, क्या अल्लाह ताला ने हमें किसी मकसद के बगैर पैदा किया है, और अगर ये है तो फिर तो दुनिया में भी हर काम बेमकसद होना चाहिए। फिर 9 नबियों का जिक्र है, जिसमें सबसे ज्यादा डिटेल से दाऊद और सुलेमान का किस्सा है, और अल्लाह ताला ने बता दिया कि उसका कानून अदल बेलाग है। किसी इंसान का अच्छा रवैया ही काबिले कबूल है, चाहे वो दौलतमंद है चाहे वो गरीब है। ना दौलत वाले की दौलत उसको नुकसान देगी और ना गरीब की गुर्बत उसको नुकसान देगी, अगर वो इंसाफ करेगा और अल्लाह के हुक्मों पे चलेगा। और फिर आखिर में दो अंजाम भी आप देखेंगे इस सूरत में, आपको तकाबुल भी दिखेगा कि अल्लाह के फरमाबरदार बंदों का अंजाम क्या होगा और सरकशों का क्या अंजाम होगा। दुनिया में भी ये फ़र्क है तो आखिरत में भी होगा। वो लोग जो दुनिया में आंखें बंद करके लोगों के पीछे चले जा रहे हैं, कल वही अपने पीरों से पहले वहां पहुंचे होंगे और दोनों एक दूसरे को वहां कोस रहे होंगे, जबकि नेक लोग एक दूसरे को जन्नत में देखकर खुश हो रहे होंगे। और आखिर में हम पढ़ेंगे आदम और इबलीस का किस्सा, जिसकी रोशनी में हमें ये बताया जा रहा है कि देखो, तकब्बुर ही है वो चीज़ जो हक से रोकती है। आप ये सूरत में एक चीज़ नोट कीजिएगा, सूरत की इब्तदाई 2 आयतें और आखिरी वाक्या, दोनों में जिस रुकावट का जिक्र है ना, वो हिदायत के रास्ते की रुकावट है। इंशाल्लाह हम देखेंगे कि जिद, ईगो, और इसी तरह स्टबननेस, शिकाक, और इसी तरह किब्र, तकब्बुर, ये 3 बड़े पत्थर हैं जो हिदायत के रास्ते पे इंसान को चलने नहीं देते। अब शुरू करते हैं इस सूरत को। आज का सबक हमारा इंशाल्लाह हज़रत सुलेमान के किस्से तक होगा, और कमो बेश वही बातें जो आपको अदर बता दी गई हैं, उसकी बहुत सारी बातें हमारे आज के हिस्से में आएंगी। आइए तफसीर देखते हैं लफ्ज़ों के साथ तर्जमे को देखते हुए। अस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्वात वल कुरआनी ज़िक्र। स्वात कसम है इस कुरान की जो जिक्र वाला है। यहाँ नोट कीजिएगा, स्वात जो है गो के हरफ मकत्तात में से है, लेकिन यहाँ आयत पूरी नहीं हुई। आयत कहाँ पूरी हो रही है? वल कुरान जिक्री, कि जिक्र कुरान की कसम जो जिक्र वाला है। गोया कि आप ये कह सकते हैं कि कुरान के जिक्र वाला होने की कसम खाकर अल्लाह सुबहाना ताला ने इस जुमले को पूरा किया। और यहाँ जिक्र से मुराद कुरान भी है, नसीहत भी है। सूरत हिजर आयत 9 में हम पढ़ चुके, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून, यकीनन हमने जिक्र को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। सूरत अंबिया आयत 10 में हम पढ़ चुके, लक़द अनज़लना इलैकुम किताबन फीही ज़िक्रुकुम, बेशक हमने नाजिल की तुम्हारे तरफ किताब जिसमें तुम्हारा ही जिक्र है। अफलात आकिलून, क्या पस तुम गौर नहीं करते, अकल नहीं करते? तो गोया के फिर जी जिक्र से मुराद है याद दहानी वाला, खैर की बात याद दिलाने वाला, इंसान को इधर उधर की बातों से उलझाकर उसके मतलब वाली बात दिलवाने वाला। और हकीकत यह कि कुरान का यही मिजाज है, भूली बातें भी याद कराता है। अलस्तु बिरब्बिकुम का वादा जब भूलने लगता है तो वो भी याद करवाने लगता है, और इस तरह एक इंसान चल पड़ता है आगे से आगे, आगे से आगे। और आप देखेंगे कि यहाँ कसम खा दी गई, लेकिन आगे जवाब कसम कोई भी नहीं है। अगली ही आयत में कह दिया, बलिल्लज़ीन कफरू फी इज़्ज़तिन व शिक़ाक, बल्कि वो लोग जिन्होंने कुफर की रविश इख्तियार की, वो गुरूर और ज़िद में मुबतला हैं। यानी अल्लाह के नबी की दावत के मुकाबले में उस मुआशरे में जो ज़िद की कैफियत जारी थी, उसका तذکرہ कर दिया कि एक तरफ अल्लाह का बंदा लोगों को कहता है, लोगों अल्लाह को एक मानो, तुम उसके बन जाओ, दूसरी तरफ लोगों का हाल क्या है कि वो कुफर की शक्ल इख्तियार किए हुए हैं, ज़िद में आ चुके हैं। ये झूठी इज्जत और गरूर उनको अटका देता है ना, को इतना ज़्यादा उन्होंने अपनी ज़ात पर तारी किया हुआ है कि इस पर अड़के आ गए। लेकिन उस आयत को छेड़ने से पहले हम ये सवाल देखते हैं कि यहाँ कसम खाकर उसका जवाब क्यों नहीं दिया गया? सवाल समझ रहे हैं आप लोग? हर कसम के बाद कुछ उसके बाद आते हैं ना, मैं तुमने कसम खाती हूँ, आप कहेंगे क्या खाती हो, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ। तो मुफस्सरीन कहते हैं कि जहाँ भी ऐसी कोई आयत आ जाए जैसे आई थी, तो वहाँ जवाब कसम वही है जो सूरत यासीन की आयत नंबर 3 में था। और वो क्या था? यासीन वल कुरान अल हकीम इन नकल मिनल मुरसलीन। तो यहाँ फिर अंदाज क्या है, सिर्फ समझने के लिए सुन लीजिए, कि स्वात वल कुरान इज ए जिक्री इन नकल मिनल मुरसलीन। स्वात कसम है नसीहत वाले, जिक्र वाले कुरान की, यकीनन आप भेजे हों में से। क्योंकि उस वक्त झगड़ा ही ये था मक्का में, घर घर एक ही रोना रोया जा रहा था, ये कौन है, ये क्या है, लोग इसके पीछे क्यों लग गए, इसने हमारी नींदें खराब कर दी, ये हमारे बुतों को बुरा कहता है, हमारे बच्चे इसके पीछे लग गए, दिस एंड दैट। तो लिहाजा अल्लाह ताला की नबी की नबूवत पर बात की गई। और याद रखिए कि यहाँ ये बात भी समझ आती है कि जब यहाँ स्वाद के बाद एक आयत पूरी नहीं हुई, साथ ही वल कुरान अलग आ गया, जबकि दूसरे कुरान के हिस्सों में आप देखते हैं ऐसा नहीं है, अलग भी लफ्ज़ हैं फिर उसके बाद अलग हैं, कहीं तौहा है, कहीं यासीन हामी। तो ये सब भी अल्लाह के हुक्म से है। कुरान में जहाँ नुक्ता नहीं लगा वहाँ नुक्ता नहीं लगा सकते, जहाँ आयत नहीं लगी वहाँ आयत नहीं लगा सकते, कभी अलिफ लाम मीम है तो कभी अलिफ लाम रा है तो कभी साथ साथ चल रहा है, तो ये सब तौफीकी हैं, अल्लाह ताला के हैं। अब हम अपने आप से पूछे कि क्या कुरान मेरे लिए एक रिमाइंडर है, थिंग्स टू डू है? क्या कुरान को सुनकर मेरे दिल में हकीकत में ज़िंदगी का मकसद याद आ जाता है मुझे? क्या मुझे पर्पज़ ऑफ लाइफ याद आ जाता है? हकीकत ये कि हमारी बेकार जिंदगियों को इस कुरान ने एक मकसद दे दिया, हमारी कम आएगी को इस कुरान ने इतना कीमती बना दिया कि हम भी कुछ अल्लाह से उम्मीद रख सकते हैं कि अल्लाह तेरी किताब को सीखते थे तो हमारी मदद कर दे, तू हमसे राजी हो जा, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। अल्लाह ताला की ये किताब हकीकत में इंसान को भूली बातें याद दिलाती है। ज़िंदगी के कई मोड़ ऐसे होते हैं जहाँ ये किताब हाथ थाम लेती है तो इंसान अपने आप को बचा लेता है। इसके बरक्स जब एक इंसान इस किताब से कटता है तो ऐसे लगता है कि जैसे डोरी छूटे तो इंसान दूर जाके गहराइयों में गिर जाए। इसलिए इस किताब को अल्लाह ताला कहते हैं पकड़ लो, नसीहत है इस कुरान की, कसम है इस किताब की, तुम्हारा फ़ायदा है, पकड़ के तो देखो, इसको थामोगे तुम्हारी दुनिया संवरेगी, तुम्हारी आखिरत अच्छी होगी। बस कहते हैं जी जिक्र से मुराद क्या है, शान वाला, मर्तबे वाला, तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी, तुम इसको पकड़ के देखो तुम्हारा मर्तबा बढ़ जाएगा, किताब खुद भी इज्जत और शर्फ वाली है, इसको थामने वाले भी इज्जत वाले हो जाते हैं। आप पढ़ते हैं कुरान में, पीछे अल्लाह के नबी के बारे में आया कि अल्लाह के नबी ये कुरान आपके और आपकी कौम के लिए एक शर्फ है, एक इज्जत है। आज मक्का लोग क्यों भाग भाग के जाते हैं, आज खाना काबा क्यों अहम है, आज सूखी ज़मीन अरब की क्यों लोगों को इतनी अच्छी लगती है कि वहाँ पहुँचने के लिए भागते हैं, क्योंकि वहाँ अल्लाह की किताब नाजिल हुई। तो ये कुरान एक ऐसा मैजिक टच बन जाता है कि जिस चीज़ के साथ लगता है वहाँ इंसान इसकी बरकतों को महसूस करता है। इसी तरह इस किताब को जिक्र अली क्यों कहा गया, क्योंकि यह अहले ईमान और तकवा के लिए नसीहत और दरस इबरत भी है। ईमान नहीं होगा ना कुरान जिक्र नहीं बनेगा, तकवा नहीं होगा ना हर नीयत से कुरान पढ़ेंगे जिक्र के तौर पर नहीं पढ़ेंगे, वजीफे बनाएंगे, कुछ और करेंगे, कुछ और करेंगे। अल्लाह ताला कहते हैं बल, सवाल पैदा होता है यहाँ बल क्यों आ गया? बल से मुराद जहाँ मक्का वालों का नबी सल्लम को दिए गए इल्काबात हैं। क्या कहते थे? साहिर, शायर, काजिब, मजनू। अल्लाह कहते हैं बल, नो, गलत कहते हो, बल्कि वो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं जिन पर ये शान वाला कुरान नाजिल हुआ। तो ये कुरान तो इतना खूबसूरत है कि ये अल्लाह के नबी सल्लम पर उतरा, लेकिन बलिल्लज़ीना कफरू, बगर काफिर, फी इज्जतिन, गरूर में पड़े हुए, वशिकाक और मुखालफतों में। ये है असल में परेशानी का मामला, इज्जा है ईगो, झूठी इज्जत। अजीज, इज्जा, ये लफ्ज़ इसी से हैं। और शिकाक कहते हैं जिद को, स्टबर्ननेस। लिख लीजिए हिदायत के रास्ते के दो बड़े पत्थर हैं। जब इंसान के कानों से अल्लाह की बात टकराती है, जब ये कुरान जिंदगी में खुलता है, तो इसकी सबसे पहली चोट इंसान की अना पे पड़ती है। इंसान पर्पस लेस जिंदगियां गुजार रहे होते हैं, बच गाना कैफियत होती है, खेल तमाशों में पड़े होते हैं, मकसद जिंदगी का होता कोई नहीं। जो ही कुरान खुलता है तो फिर इंसान को अपने सब काम बिल्कुल बेकार दिखने लगते हैं। अच्छा, मैं तो बच्चों वाले घर घर खेल रहा हूँ, आज मैं इसके घर, कल तुम मेरे घर, आज मैं ये खाऊंगी, ये मैं पकाऊंगी, आज उधर शॉपिंग करनी है, आज उधर जाना है, उधर जाना है। अब ये बातें इंसान को एकदम हर्ट करती हैं। और रियली ऐसी बात है, चलो फिर मैं कुछ करती हूँ। जूं ही आप कुरान जैसा बनने चाहते हैं, आपके दोस्तों के मिजाज बिगड़ने लग जाते हैं, उनकी तवज्जो भटकती है, वो कहते हैं कि तुम किधर चल पड़ी। अब बस पहला मसला ही को, इस्लाम कहता है हिजाब करो, हो ये बहुत ट्रबल है। सबसे ज्यादा मेरे लिए ट्रबलिंग फेज ही हिजाब है, उससे अभी निपटे नहीं तो निकाब पे आ गए, निकाब की फिक्र लग गई तो कहा कि औरत को जॉब की क्या जरूरत है, घर में बैठ के बच्चे पाले। लम्हा लम्हा कुरान बंदे को निचोड़ता है। याद रखिए, अपने कुछ होने का एहसास होता है हमें, मुआशरे में मैं बहुत अहम हूँ, बड़ी इज्जत है, कितने क्लब्स की मेंबरशिप है मेरे पास, मैं बहुत बड़ी हूँ, मैं सदर हूँ वहाँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ वहाँ, प्राइम मिनिस्टर हूँ। कुरान पढ़ने आते हैं लोग, सबके साथ आपको बिठा देते हैं, सब जमीन पे बैठे हैं, आपको भी बैठना पड़ेगा, सब खामोश हैं आपको भी खामोश रहना पड़ेगा, सबको यूनिफॉर्म पहनना है आपको भी पहनना पड़ेगा, सब ज्वेलरी नहीं पहन सकते आप भी नहीं पहन सकते, सब सेल्फ प्रोजेक्शन का शिकार नहीं हो सकते आप भी नहीं हो सकते। बस यहीं से पहला मसला शुरू हो जाता है, ये नहीं हो सकता, हम सब जैसे तो नहीं हो सकते, ये तो नहीं वो तो नहीं होते। अब उसमें दो में से एक बात जरूर होगी, कुरान की बारिश पड़ती रहेगी तो आहिस्ता आहिस्ता गैर मखसूस तरीके से। ऐसे फील करती हूँ मैं कि जैसे कुरान इंसान को दबाता है दबाता है, स्क्वीज करता है करता है, और गैर महसूस तरीके से सब इज्जा और शिकाक निकल जाता है। मैं क्या हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है मेरे से, क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं क्या बड़ी बात हूँ, चलो कुछ नहीं होता, ना मुझे कोई पूछे, सबके बराबर ही हूँ। हरम में भी तो जाके मुझे कोई नहीं कोई कुछ कहता, वहाँ भी तो सब मेरे पाँव पे पाँव मार के भी जाने को तैयार है, वहाँ भी तो अपना सामान उठाना है। इस तरह से इंसान लड़ता है ना तो अल्लाह के हुक्म से वो सब चीज़ें निकल के खोट खपट की जो सूरत में जिस्म में थी ना, तो फिर बंदगी का रंग आने लगता है, फिर अल्लाह का हुक्म सुनना और सुनकर मानना आसान लगता है, ये सेकेंड फेज होता है। फिर अच्छा लगता है कि चलो शुक्र है मैं अल्लाह की बात तो मान रही हूँ ना। फिर आहिस्ता आहिस्ता का अगला मरहला क्या आता है कि इंसान को इस बात को सुनकर मानने में मज़ा आने लगता है, और आहिस्ता आहिस्ता फिर अर्ज पैदा होती है, फिर दिल चाहता है आज बहुत दिन हो गए कोई नई बात ही नहीं शुरू की, कोई नया काम ही नहीं शुरू किया, ये नेकियां तो बहुत पुरानी हो गई हैं, ये तो बहुत दिन से करती आ रही थी, और होते होते सिबगत अल्लाह ही वमन अहसनु मिन अल्लाह की सिबगा। इसकी रुकावट इंसान को यानी सिबगत अल्लाह का रंग लेना बहुत आसान हो जाता है। और याद रखिए कि बैरूनी रुकावटें इंसान को नहीं रोकती, अंदरूनी रुकावटें रोकती हैं, और ये दोनों अंदर की रुकावटें हैं, इज्जत और शिकार। या ईगो होती है, मुझे नीचा क्यों कर दिया, मुझे पीछे क्यों बिठा दिया, मुझे प्रोटोकॉल नहीं दिया, मुझे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों नहीं दिया, यस आई एम स्पेशल, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं स्पेशल हूँ। और या फिर एक राह जाती जिद हो जाती है, हम जो थे इस सोसाइटी के बड़े अबू जहल और अबू लहाब की सूरत में, अब ये कौन आ गया बीच में, और दिस एंड दैट, इस तरह की बातें जो हैं वो लोगों को नहीं आने देती। याद रखिए, कुरान की दावत से सिर्फ वही फायदा उठाएगा जो कुरान के सामने खुद को ऐसे ही रख दे जैसे नहलाने वाले के हाथ में मुर्दा खुद को देता है। इमाम गजाली का कॉल सुनाया था आपको, कहते हैं बंदगी ये है कि अल्लाह के हाथ में खुद को ऐसे दे दो कि जैसे मुर्दा खुद को नहलाने वाले के हाथ में देता है, मोड़ो त्रोड़ो घुमाओ पेट को दबाओ, नो रेजिस्टेंस। जब हम इस तरह के मुस्लिम बनते हैं ना तो इज्जा और शिकाक निकल जाता है। और खुशकिस्मत है ये लोग, आपको पता है कि उमर फारूक की क्या पर्सनैलिटी थी, उस दौर में भी फख्र किया करते थे, तस्वीरें लगा लगा के अपने घर में और बाप दादा के नाम पे फख्र किया करते थे, बैठ के सजती थी, महफिलें सजाते थे, लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल देते थे, छोटी छोटी बात को रस्म बनाकर इस तरह लोगों को उसकी तरफ माइल करते थे। और जब अल्लाह ने उनको इस्लाम दिया तो इज्जा और शिकाक की गंदगियों से निकले तो अपना गाल ज़मीन पर रख के रो पड़ते होते थे कि उमर तेरा क्या बनेगा। अबू बकर एक परिंदे को देखकर रोते हैं तड़पते हैं कि परिंदे तू कितना खुशकिस्मत है कि तू मरेगा और कल उसके बाद तेरा हिसाब नहीं होगा, सारे मामले ख़त्म हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इस तरह से इंसान अपने आप को मतलब फिर समझने लग जाता है कि वाकई उसकी ज़िंदगी में तब्दीली आती है। मैं और आप अपने ऊपर लें, छोड़ दें सबको, वो अपने अंजाम को पहुंच गए, और कोई आज के दौर में कुछ पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा वो उसका मामला, लेकिन मुझे तो बस अपनी फिक्र है। क्या मेरे अंदर तो कोई ऐसी नेगेटिव सोच नहीं है जो मुझे कुरान से रोके हुए, जो मुझे इससे फ़ायदा उठाने ही नहीं दे रही? क्या मैं अना का शिकार तो नहीं, क्या मैं जिद का शिकार तो नहीं हो गई? और जो होएगा तो एक बार नहीं 10 बार हो, अल्लाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हिदायत मेरी और आपकी ज़रूरत है, अल्लाह की नहीं है। हम नहीं होंगे अल्लाह किसी और को भेज देगा, لیکن نقصان میں اور آپ اپنا خود اٹھائیں گے. اس راستے میں سب سے زیادہ غلط فیصلہ جو ایک انسان کر پاتا ہے نا, جس کا بہت خطرہ ہوتا ہے, جیسے ایک گاڑی چلاتے ہوئے راستے میں راؤنڈ اباؤٹ پہ خطرہ ہوتا ہے نا کہ ایک دم غلط نہ راستہ لے لے. جب بھی راؤنڈ اباؤٹ آتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کدھر مڑنا تھا کدھر جانا ہے, کتنے کانشیس ہو کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں. اسی طرح ہدایت کے اس سفر میں اتنے راؤنڈ اباؤٹ آتے ہیں, اتنے کرس کراس آتے ہیں, اور اس میں سے ہر کرس کراس میں کہہ سکتی ہوں یقین سے کہ عزا اور شقاق میں سے گزرتا ہے. ایسی چوٹ, مجھے یہ کہہ دیا, مجھے فلاں نے کہہ دیا, میرے بارے میں اس نے یہ سوچ لیا, میں اور میں چھوڑ گئی, میں نے قرآن چھوڑ دیا. بلیو می کئی لوگ 20ویں سپارے پہ آ کے بھی قرآن چھوڑ دیتے ہیں, 25ویں پارے پہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. آپ میں سے کوئی سیکیور نہیں ہے ابھی, یقین کریں. اور بعد میں آپس کی لڑائیاں, دو ساتھیوں کی جنگ ہو گئی, کسی کو ایڈمن سے کوئی مسئلہ ہو گیا, اور میرا خیال ہے استادوں سے بھی ہوتے ہوں گے, ویسے بتاتے نہیں ہیں لوگ, دلوں میں رکھ کے چھوڑ تو دیتے ہوں گے. بہت کم لوگوں نے, جرم مجھے کوئی کہہ دے تو میں تو اس کے گھر جا کے معافی مانگ لوں اسے, لیکن یہ اللہ کے حکم سے کبھی ہوا نہیں آج تک. لیکن شیطان دلوں میں ڈالتا ہے اس طریقے سے, اس طرح سے انسان اپنے آپ کو پیچھے کرتا ہے کہ پھر اپنی عزت کے ہاتھوں جانا بھی نہیں چاہتا. یہ بھی یاد رکھیے, پہلی صورت ہوتی عزا, ایگو آ گئی, منہ سے کوئی بات کر دی, بھائی تھوڑے دن میں غصہ اتر گیا, بات ختم ہوگی, واپس آ جاؤ, نہیں, پھر شکاک میں ڈھل جاتی ہے. اب ضد ہو گیا, اب لوگ کیا کہیں گے, آپ کہیں گے اچھا جی تھوک کے چاٹنے والی بات ہے, کسی کو کیئر بھی نہیں ہوتی. مثالیں دیکھیں, اللہ نہ کرے کسی دن مجھے آپ پہ غصہ آئے تو میں یہاں سے اٹھ کے چلی جاؤں نا, کہ میں نہیں آپ کو پڑھاتی, میرا نہیں خیال آپ کو میری ضرورت ہے. گھر جا کے یا راستے میں ہو سکتا ہے مجھے گلٹ آنے لگے, کتنی بری بات ہے, تمہیں اللہ نے نیکی کا موقع دیا تھا, تم ان کی خدمت کرتی تم بہت بڑی بنی, تمہیں کیسے انسان چاہیے تھے کہ فرشتے. مجھے فوراً اسی گاڑی میں واپس آ جانا چاہیے کہ چلیے میرا غصہ اتر گیا, یا آئندہ ایسا نہ کریں, دیٹس اٹ. اور اگر میں اس کو بنیاد بنا کر اپنی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے, پھر یاد رکھیے کہ لوگ دوسرے کو بلیم کرتے ہیں, پھر غیبت کا, بہتان کا, پھر کوئی چار لوگ بھی تو پوچھیں گے نا, آپ جاتی تھی کیا ہوا, آپ کیوں نہیں جا رہی. کوئی یہ تو نہیں کہے گا نہیں وہ بہت اچھے لوگ ہیں بس میں نے جانا چھوڑ دیا, وہ بہت کوآپریٹو ہیں بہت ساتھ دیتے ہیں میں نے جانا چھوڑ دیا. لوگ کہیں گے پھر آپ کا دماغ خراب ہو گیا, پھر الٹی باتیں, بوجھ بہت ہے, پریشانی بہت ہے, کام بہت ہوتا ہے, ہارڈ بہت ہے, ٹو مچ ہے, دس ہے, وہاں فیوریٹزم ہے, وہاں دس اینڈ دیٹ, یہ سب عزا اور شقاق ہے. ان دو پتھروں کو اگر آج آپ پہچان گئے تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کبھی آپ کو غصہ آنے لگے. ہدایت کے کسی سفر سے بھی اپنے آپ کو پیچھے کرتے وقت تو فوراً چیک کیجئے کہ کیا اس وقت میں ضد کا شکار تو نہیں ہو گئی. بچے کو ضد چڑھتی ہے نا, بھوکا رو رو کے سو جاتا ہے, دودھ نہیں پیتا, یہ بچے کے اندر بھی ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں اور لکھ لیجئے کہ عزا اور شقاق یہ بچگانہ صفتیں ہیں. بچے میں بھی انا بہت ہوتی ہے, آپ اس کے ہاتھ سے ٹافی کا ریپر تو چھین کے دیکھیں, یوں روئے گا جیسے پتہ نہیں آپ نے اس کی جائیداد چھین لی. بڑے ہونے کے بعد انسان میں سنجیدگی آنی چاہیے, اور قرآن انسان کو حقیقت پسند بناتا ہے, ریئلسٹک بناتا ہے. ہم اس قرآن کی آخری سیڑھیوں پہ قدم رکھ چکے ہیں, اگر عزا اور شقاق سے نہیں نکلے تو ابھی اپنے فیصلے ہم خود سن سکتے ہیں, ہمارے بارے میں آگے اللہ نے کیا فیصلے کیے ہیں وہ قرآن میں موجود ہیں. اس لیے ان چیزوں کی انسان کو فکر لگنے چاہیے.